ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रशेखर शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बुलकिया से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इस दौरान आपसी संबंधों के सभी पहलुओं और सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी चर्चा होने की संभावना है। बातचीत के बाद कई समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान की भी उम्मीद है। श्री मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की अपनी दो देशों की यात्रा के पहले चरण में कल बंदर सेरी बेगवान पहुंचे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया और ब्रुनेई के प्रधानमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ मंत्री हाजी अल मुतहती बिल्लाह ने उनकी अगवानी की। श्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर ब्रुनेई जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और यह यात्रा भारत ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने बंदर सेरी बेगवान में भारतीय उच्चायोग की नई चांसरी का उद्घाटन किया। उन्होंने ब्रुनेई में उमर अली सबहुद्दीन मस्जिद का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी आज अपनी यात्रा के दूसरे चरण में देर रात सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर सिंगापुर जा रहे हैं। इस दौरान दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में केंद्र और त्रिपुरा सरकार नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के प्रतिनिधियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा त्रिपुरा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण को पूरा करने और उसे उग्रवाद, हिंसा तथा संघर्ष से मुक्त करने के लिए गृह मंत्रालय अथक प्रयास कर रहा है। इससे पहले केंद्र ने पूर्वोत्तर में शांति और समृद्धि के लिए 12 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 3 समझौते त्रिपुरा से संबंधित हैं। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण लगभग 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रपति आज सुबह महाराष्ट्र के लातूर जिला स्थित उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा अजीत पवार भी रहेंगे। राष्ट्रपति उदयगिरी कॉलेज मैदान में महिला आनंद मेलावा में भी भाग लेंगी। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म हत्या की वारदात और पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर राज्यभर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच कई हस्तियां पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार वापस कर रही हैं। इसमें साहित्यिक, थिएटर और फिल्मी रंगमंच से जुड़े लोग शामिल हैं। विप्लव बंदोपाध्याय, सुदीप चक्रवर्ती, स्वास्तिका मुखर्जी और चंदन सेन ने संबंधित क्षेत्रों में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए मूल्य पुरस्कार लौटा दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का निधन हो गया है। वे 98 वर्ष के थे और पिछले कई दिनों से अस्वस्थ थे। सोमवार शाम को उन्होंने अंतिम सांस ली। श्री पूनम चंद यादव के निधन पर कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों ने दुख व्यक्त किया है। विश्व बैंक ने कहा है कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्वस्थ गति से आगे बढ़ रही है और देश का मध्यम अवधि का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। विश्व बैंक के नवीनतम भारत विकास अपडेट बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के व्यापार अवसर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास दर 7% तक पहुंचने का अनुमान है। यह 2025-26 और 2026-27 में भी मजबूत रहेगा। भारत विकास अपडेट में यह भी कहा गया कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8.2% की तीव्र गति से आगे बढ़ा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा के फाइनल में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कांस्य पदक जीता है। दीप्ति की इस जीत से भारत के कुल पदकों की संख्या 16 हो गई है, जिसमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। दीप्ति ने फाइनल में 55.82 सेकंड के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए दीप्ति को बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।